समीक्षा डैश प्रस्तुत पुस्तक में प्राकथन के अतिरिक्त 27 अध्याय हैं। अध्यायों के समस्त शीर्षकों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने अत्यंत विस्तृत क्षेत्र चुना है। प्रारंभ में उसने तिथि क्रम का निर्वाह करते हुए वैदिक, पौराणिक, बौद्ध तथा जैन इतिहास लेखन पर विचार किया है और उसके पश्चात वान की चर्चा के उपरांत उसने भारतवर्ष के विभिन्न भूक्षेत्रों में हुई इतिहास रचना पर चर्चा की है। इतने विशद क्षेत्र को लेने पर विवरण का रूप रेखात्मक मात्र होना स्वाभाविक है। कुछ अध्यायों में यह कमी अत्यंत स्पष्ट रूप में झलकती है। उदाहरणार्थ वैदिक, बौद्ध तथा जैन इतिहास लेखन से संबद्ध विवेचन विषय के साथ न्यायकर्ता नहीं प्रतीत होता। वर्तमान लेखक ने अलग अलग कृतियों को न लेकर विभिन्न क्षेत्रों की रचनाओं को सामूहिक रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि इसमें भारतीय इतिहास पर प्रकाशन डालने वाले विभिन्न प्राचीन लिखित इतिहास स्रोतों का संकलन एक स्थान पर प्राप्त है। भारत के विभिन्न भूप्रदेशों में लिखी गई पुस्तकों के अतिरिक्त लेखक ने श्रीलंका तथा नेपाल में लिखी गई उन इतिहास पुस्तकों पर भी विचार किया है जो भारतीय इतिहास के किसी न किसी पक्ष पर प्रकाश डालते हैं, किंतु जहां लेखक द्वारा अन्य देशों के भारत संबद्ध इतिहास लेखन को पुस्तकों में स्थान दिया जाना प्रशंसनीय है, वहीं यह आश्चर्यजनक है कि लेखक ने चीन, तिब्बत तथा मध्य एशिया में लिखी गई प्रासंगिक कृतियों का कोई उल्लेख नहीं किया है। एक दो पृष्ठों में इनकी भी चर्चा उपयुक्त होती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के अपने उत्साह में लेखक ने अंग्रेजी लिखित सभी इतिहास पुस्तकों को साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की संज्ञा प्रदान कर दी है, जिसे पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। कुछ क्षेत्रों के इतिहास लेखन में कतिपय पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों द्वारा भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। उदाहरणार्थ डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा प्रस्तुत चाहमानों का इतिहास, के ए एन शास्त्री द्वारा दक्षिण भारत का इतिहास एवं सर देसाई द्वारा मराठों का इतिहास। यहाँ यह स्मरणीय है कि इस दिशा में बहुत कुछ कार्य कतिपय पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा किया जा चुका है। लेखक ने इनमें टॉड पार्जिटर एवं केपी जायसवाल का आदरपूर्ण नामोल्लेख किया है। सी एच फिलिप्स द्वारा संपादित हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन में इस विषय की गवेषणा को प्रस्तावित किया गया है, किंतु उपरोक्त भ्रांतिपूर्ण मान्यता में विश्वास के कारण विषय के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों में वी एस पाठक की एशियंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक विशेष रूप उल्लेखनीय है, जिसके योगदान को लेखक ने भी प्रशंसापूर्ण शब्दों में स्वीकार किया है। ए के वार्डन ने पाठक की पुस्तक को इस क्षेत्र के अध्ययनों का प्रमुख आधार ग्रंथ माना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में कुछ अन्य पुस्तकों का भी प्रकाशन हुआ है, जिनका उल्लेख वर्तमान लेखक द्वारा नहीं हुआ है। यू एन घोषाल की पुस्तक स्टडीज इन हिस्ट्री एंड कल्चर कोष्टक में कलकत्ता 1957 का प्रथम भाग प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन से ही संबद्ध है। कई अध्यायों में लेखक ने वैदिक, बौद्ध तथा जैन इतिहास लेखन के साथ साथ कलहन तथा बाण की कृतियों पर विस्तृत तथा विद्वतापूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है। इन पर इतना विस्तारपूर्ण विवेचन और कहीं नहीं किया गया है। इस प्रसंग में दो उल्लेखनीय पुस्तक चंद्रकांत गजानन राजे की बायोग्राफी एंड हिस्ट्री इन संस्कृत लिटरेचर बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1958 तथा एस जे समर्थ की द हिंदू व्यू ऑफ हिस्ट्री क्लासिकल एंड मॉडर्न बेंगलोर 1959 ईस्वी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत पुस्तक शुद्धता इतिहास लेखन पर केंद्रित है। यदि एक पृथक अध्याय में भारतीय इतिहास दर्शन की भी चर्चा की गई होती तो पुस्तक की उपादेयता बढ़ जाती। आधुनिक इतिहास लेखन में इतिहासकार के सामने जो समस्याएं उपस्थित होती हैं और जिन पर उसे विचार करना होता है, उनके प्रति प्राचीन भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था, यह प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के स्वरूप को बोधगम बनाने में काफी सहायक होता। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन प्रश्नों पर विचार होना अविशेष है और इस दिशा में निश्चित रूपेण कुछ कार्य प्रारंभ होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि इतिहास लेखन की विविध विधाओं का संबंध दार्शनिक तथा धार्मिक मान्यताओं के प्रकाश में अध्ययन किया जाए तथा साथ ही उनके औचित्य तथा अनौचित्य पर इतिहास लेखन के आधुनिक विचारों तथा विधाओं के संदर्भ में विचार किया जाए। समाप्त।